श्री राम जय राम जय जय राम 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 राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय दया करुणा जय सीताराम लक्ष्मण श्री हनुमान सीताराम लक्ष्मण श्री हनुमान जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दया करुणा। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री गौर निथाई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमई की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, श्री राम नवमी महामहोत्सव ऋतु की, मिथाई गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज सवेरे के इतवार के 17 अप्रैल के सत्र में आप सबका स्वागत है श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के मंदिर में। तो मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, शायद नहीं लिखा गया है वो। आप हाँ इधर आ गया, अच्छा वेरी नाइस। ये श्लोक रामायण के युद्ध कांड का 18वां अध्याय में 33वां श्लोक है। रामायण युद्ध कांड 18th chapter 33rd verse। अपने को हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है? इंग्लिश की हिंदी की इंग्लिश सो व्हाट इज द फाइनल डिसीजन? हिंदी। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम। सकृत केवल एक बार, एव एव अवश्य, प्रपन्नः शरणागत यह जो कोई भी, तव आपका, अस्मि मैं हूँ, इति ऐसी, च याचते प्रार्थना करता है, अभयम् भय से मुक्त, सर्वदा सदैव, तस्मै उसे, ददामि मैं देता हूँ, एतद् ये व्रतम प्रतिज्ञा मम मेरी। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में अध्याय 22 के 34वें श्लोक में प्रभुपाद जी इस श्लोक को उद्धृत करते हैं, और इसमें थोड़ा सा अंतर ऐसा है रामायण के श्लोक में, इसमें लिखा है अभयम् सर्वदा तस्मै, और रामायण में लिखा है अभयम् सर्वभूतेभ्यो। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन एक में ऐसा महसूस होता है कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा उसको मैं अभय दूंगा, और जब हम कहते हैं अभयम् सर्वभूतेभ्यो, सभी लोग जो मेरे पास आएंगे सब लोग इसको प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा अंतर है, नहीं भी होने पर भी श्री रामचंद्र भगवान कह रहे हैं ये मेरा व्रत है कि यदि कोई ये कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है और कहता है हे प्रभु आज से मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए, और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और वो उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। और उसमें एक लास्ट शब्द है, आप देखेंगे एतद् व्रतं मम, जिसका अनुवाद शायद इसमें नहीं है, ये मेरा नित्य व्रत है, एतद् एतद् व्रतं मम, दिस इज माय व्रत फॉर एवर। तो चलो प्रभुपाद जी ये रामायण का श्लोक यहाँ बताते हैं युद्ध कांड का, और हम देख सकते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं जो ऐसा व्रत रखते हैं जो हमारे हित में है। कोई भी व्यक्ति व्रत करता है तो वो खुद के लिए व्रत करता है, उसका आपका अपना एजेंडा होता है। और खुद के लिए उसमें कुछ हेतु या उद्देश्य होता है, लेकिन भगवान स्वयं के लिए कभी जीते नहीं है, भगवान केवल दूसरों के लिए जीते हैं। खास करके वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र के रूप में आते हैं तो केवल दूसरों के लिए जीते हैं। रामायण का गौरव किया गया है वाल्मीकि मुनि ने, और वाल्मीकि मुनि जो लिख रहे हैं उसमें नारद मुनि जी गौरव कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि जो रामायण, बहुत श्लोकों में उसका वर्णन किया गया है, गौरव किया रामायण का, लेकिन उसका सार में अगर समझेंगे तो रामायण जो श्रवण करेगा उसमें दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए इच्छा की बहुत ज़रूरत होती है, और एकाग्रता के बीच में निद्रा भी आ सकती है। निद्रा को दूर रख के इच्छा पूर्वक एकाग्रता रखना, ये नंबर वन का रिक्वायरमेंट है। और नंबर दो का रिक्वायरमेंट है कि कम से कम उस समय तक, जिस समय आप कथा सुन रहे हो सकता है ऑल समय के लिए, लेकिन कम से कम उस समय तक जिस समय में हम कथा सुन रहे हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना है, जितेंद्रिया बनकर रहना है, एकाग्र चित्त और जितेंद्रिया, इन दो कंडीशंस को आप अगर शर्तों को पूरा करते हो और श्री रामायण सुनते हो तो 100 जन्मों के आपके पाप संचय नष्ट हो सकता है, और हजारों पीढ़ियों के साथ आप गौलोक धाम प्रवेश कर सकते हो। सहस्त्र पीढ़ी, उन सब रिश्तेदारों के साथ में आप गौलोक धाम में प्रवेश कर सकते हो। और बाकी तो अनंत लाभ दिए गए हैं, धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, ये सब कुछ तो है ही, उसको हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हम तो केवल रामायण भी सुनेंगे तो केवल एक उद्देश्य से सुनेंगे, ये भी नहीं कि हमारी पाप मुक्ति हो, हम गौलोक धाम चले जाएं, वो तो दे रहे हैं वो बड़ी दया से, लेकिन हम केवल सुनेंगे रामायण प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु राम का गुणगान करने के लिए, ओनली टू प्लीज द लॉर्ड। सम सिद्धिर हरि तोषणम, सम सिद्धिर राम तोषणम, हमारा उद्देश्य ही होना चाहिए। हम किसी भी भौतिक या तथाकथित भौतिक लाभ के हेतु से कोई भी कार्य नहीं करना चाहते और नहीं करना भी चाहिए। एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी हम करेंगे वो केवल भगवान को संतुष्ट करें, और भगवान को संतुष्ट करते समय हमें संतुष्टि मिले या ना मिले उसकी भी ना परवाह करते हुए, अगर उनको संतुष्टि मिल रही है तो फिर वो करते रहना है, दैट इज आवर पर्पस। तो इस तरह से नारद मुनि जी सनत कुमार जी को ये रामायण का गौरव कर रहे हैं, और एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, और मुझे लगता है कि आपको भी वो बोलना चाहिए मेरे साथ। राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ये रामायण में दिया है हा? ये कोई ऑल्टर्ड विडम्बन काव्य नहीं है। एक कविता में एक होता है विडम्बन काव्य, ये श्री राधा जी के मुख से निकला हुआ श्लोक है। राम नामैव 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 मम जीवनम, प्रभु राम का नाम मेरा जीवन प्राण है, पर मैं देख रहा हूँ आगे आने वाले कलयुग में इस नाम के बिना और कोई गति नहीं होगी, और कोई गति नहीं होगी, और कोई गति नहीं होगी। वो कहते हैं रामायण सबसे उत्तम शास्त्र है, सबसे उत्तम काव्य है, उसकी कहानी भी सुनाते हैं, थोड़ा तो आगे चलेंगे कि प्रभु रामचंद्र के जो अवतार है वो जब लिया उन्होंने तो एक दो तीन बातें बहुत प्रधान है उनकी लीला में। जैसे जो उनका व्रत उन्होंने लिया है एतद् व्रतम मम, वैसे उनका और एक व्रत भी है मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो सब चीज़ों की मर्यादा को समझाने आए हैं, एक आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुरुष कैसे होना चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए, भाई कैसे होना चाहिए, पति कैसे होना चाहिए, हाँ हर प्रकार का जो, एक पत्नी कैसे होनी चाहिए, एक भाई कैसे होना चाहिए, एक योद्धा कैसे होना चाहिए, युद्ध में खड़ा हुआ कैसे उसको अपने आप को प्रस्तुत करना है, हर प्रकार का आदर्श उन्होंने स्थापित किया है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। यहाँ तक कि विशेष बात जो जो है, सामान्य स्थिति में आदर्श को प्रस्थापित करना एक बात है और आपात स्थिति में आदर्श प्रस्थापित करना दूसरी बात है, बहुत जरूरी है। सामान्य स्थिति में शायद हम लोग आदर्श खड़ा कर भी सकते हैं, व्हेन देयर इज नो स्ट्रेस। जब हम संकट में हैं, ऐसे कहते हैं यू आर व्हेन यू आर पुट अंडर स्ट्रेस, आप सत्य में वो हो, आपकी हकीकत वास्तविकता वो है जब आप स्ट्रेस में या तनाव में रहते हो, जब संकट में रहते हो, तो आप जो स्वयं वस्तुस्थिति जो है आपकी वो प्रकट हो जाती है। बाकी जब सामान्य स्थिति है तो आप बहुत ही आदर्श और बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत रह सकते हो। जब भी कथा चल रही, समझो समझो अचानक हम बोट में बैठे हुए हैं, अचानक पता चलता है कि बोट डूबने वाली है, तो ये सबका जो है सही रंग बाहर आ जाता है कि कौन कितना प्रेमी है, सब कुछ सबके छाती में पाव रख के जाएंगे टायर को पकड़ने के लिए या बोट में उतरने के लिए, है ना। तो यू आर अंड पुट अंड यू आर वॉट यू वेन यू आर पुट अंडर स्ट्रेस, आप वही व्यक्ति हो जब आप संकट में रहते हो, जैसे दिखते हो वो आपकी वास्तविकता है। तो प्रभु रामचंद्र ने संकट और चुनौती कसौटी के साथ में भी प्रसंग में प्रस्थापित किया कि कैसे व्यक्ति को शांत चित्त रहते हुए आदर्श व्यवहार करना है। प्रभु रामचंद्र इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, स्वयं उन्होंने प्रस्थापित किया है। तो इस मर्यादा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि युद्ध में एक बार दशरथ महाराज को, दो बार एक्चुअली कैकेयी ने बचाया था, एक बार उनका यह रथ का पहिया निकल गया था तो उन्हें बड़ी कुशलता से उसको, मतलब उस उसकी वजह से दशरथ महाराज हार सकते थे, लेकिन बड़ी कुशलता से उनके रथ का पहिया उन्होंने अपनी जगह पर रखा अच्छी तरह से। और दूसरी जगह पर वो एक बार बेहोश हो गए थे तो उनको उन्होंने बहुत सुरक्षित रूप से युद्ध से निकाल कर मरहम पट्टी करके शुश्रूषा करके फिर दोबारा युद्ध में प्रस्तुत करने के लिए योग्य बनाया था। तो दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी से बड़े प्रसन्न थे उस समय। उन्होंने कहा कि आप वर मांग लेना जो आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं योग्य वर मांग लूँगी, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब समय आएगा तब मांग लूँगी। लेकिन पता नहीं था उनको कि ये रामायण का पूरा दिशा बदलने वाला वरदान होगा। रामायण एक दिशा में जा रहा था और कहीं और ले गया वो। यानी वो नियोजित था, वहाँ पर मुड़ना था उनको। तो संक्षेप में कैकेयी देश की कन्या कैकेयी दशरथ राजा की पत्नी थी और सबसे सुंदर थी वो, और कौसल्या और सुमित्रा भी उनकी पत्नी थी। कहते हैं उनकी 350 पत्नियाँ थी, लेकिन तीन प्रधान पत्नियाँ थी। और कैकेयी सुंदर होने पर कारण उनका कैकेयी पर बहुत स्नेह था, और कैकेयी भी बहुत ही श्रेष्ठ पतिव्रता थी और वो बड़े ही प्रेम से अपने पति का आनंद संतुष्टि के लिए कार्य करती थी। तो समयानुसार जब पुत्र प्राप्ति होती है तो प्रभु रामचंद्र कौसल्या को प्राप्त होते हैं, कैकेयी को भरत प्राप्त होते हैं और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त होते हैं। उसके बाद में आप जानते हैं प्रभु रामचंद्र का व्यक्तित्व इतना सुंदर और इतना आकर्षक है, बचपन से जब से उनका जन्म हुआ है दशरथ महाराज का विशेष लगाव उन पर होता है। आमतौर पर हर पिताजी का अपने पुत्र पर लगाव तो होता है, लेकिन ये स्थिति ऐसी थी कि विशेष रूप में उनका पूरा लगाव दशरथ का प्रभु राम पर हुआ करता था, इतना कि एक क्षण के लिए भी वो 24 घंटे में प्रभु राम का दर्शन न हो स्थिति में रह सकते नहीं थे। कॉन्स्टेंटली ही वॉन्टेड रामचंद्र इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, एक क्षण का विरह भी उनके अयोध्या में वो नहीं सह सकते थे। और कैकेयी प्रिय थी, ऐसा कहते हैं कि कैकेयी इतनी प्रिय थी कि सारा राज्य का जो एक तरह से नियंत्रण था उसी के पास में था। मतलब किसको क्या दान देना है, किस पर क्या कृपा करनी है, किसकी समस्या का समाधान करना है, तो कैकेयी को इतना अधिकार था कि वो राजा को बोलकर तुरंत उसका परिणाम देखती थी, इतना अधिकार था उनका प्रेम के कारण। ऐसा कुछ वो कपटी नहीं थी कि जानबूझकर पति को अपने वश में करके फिर नियंत्रण के भाव में थी, ऐसा नहीं थी। वो सहज स्वभाव में उनका प्रेम की वजह से वो उस स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी। तो यथावकाश आप जानते हैं प्रभु 12 साल के हो गए, फिर प्रभु रामचंद्र को लेने के लिए विश्वामित्र मुनि आए,
फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मुझे सुबाहु और मारीच को मारने के लिए प्रभु राम की ज़रूरत है। तो वो सुनकर दशरथ जी बेहोश हो गए। फिर उनको समझाया गया बहुत अच्छी तरह से। बड़ी लंबी कहानी है, संक्षेप में मुझे आगे बढ़ना है। तो प्रभु रामचंद्र फिर मारीच और सुबाहु का वध करते हैं, साथ में ताड़का का भी वध कर देते हैं। और उसके बाद में फिर प्रभु को विश्वामित्र मुनि मिथिला देश लेके जाते हैं। रास्ता में जब नदी पार करते हैं तो पूरी गंगा का आविर्भाव कैसे हुआ उसका वर्णन करते हैं। पूरी गंगा जी को आविर्भाव कथा जो है वो रामायण में आती है। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को सुना रहे हैं। और फिर मिथिला पहुँचते हैं, वहाँ पर प्रभु शिव धनुष का भंग करते हैं, प्रत्यंचा ओढ़ कर उसको तानते हैं तो उसका भंग होता है, उसका उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। और फिर प्रभु का विवाह सीता देवी से होता है और सीता देवी को लेकर प्रभु अयोध्या में आते हैं। बीच में परशुराम जी का संबंध होता है, उनका परशुराम जी का गर्भहरण होता है। परशुराम जी शांत होकर निश्चिंत होकर अपना विष्णु धनुष राम को सौंप कर फिर महेंद्र पर्वत पर शांति से ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। मतलब परशुराम की लीला का कार्य से वहाँ पर समाप्त होता है। परशुराम जी तो रहते हैं फिर भी उनका लीला कार्य वहाँ पर समाप्त होता है। फिर प्रभु रामचंद्र अयोध्या में पहुँचते हैं। अच्छा, अयोध्या में पहुँचते हैं तो प्रभु ऐसे थे कि उनके विषय में हर एक अयोध्यावासी आ सकता था, केवल दशरथ महाराज नहीं, कैकेयी भी आ सकती थी। कौशल्या तो थी, उनका पुत्र ही था वो, लेकिन सुमित्रा, कौशल्या, सारी बाकी रानियाँ, सारे प्रजाजन इतने राम के व्यक्तित्व पर मोहित थे। किसी को वात्सल्य भाव था, किसी को भाई भाईचारे का भाव था, किसी का दास्य भाव था, लेकिन हर व्यक्ति राम के प्रेम में थे। और अचानक यथावकाश दशरथ ने देखा कि मेरा पुत्र जो है वो लोकप्रिय इतना हो चुका है, तो ये सही समय है मुझे निवृत्त होने का। क्योंकि पुराने ज़माने में राजा अपने कुर्सी से इतने आसक्त नहीं हुआ करते थे, वो एक कर्तव्य के रूप में करते थे। अभी वो कुर्सियों से उखाड़ने के बाद भी वो उधर चिपकना चाहते हैं, लात मार कर भगाने के बाद भी उसको उसके लिए इतना तरसते हैं और इतना राजनीति और कूटनीति खेलते रहते हैं। लेकिन ये स्वयं जो लोकप्रिय राजा हैं, स्वयं कोई कहने रहा है कि दशरथ जी ये बस हो गया, अभी आप जाओ, स्वयं निर्णय ले रहे हैं। और वो उनके हिसाब से वो इतने वृद्ध नहीं थे त्रेता युग के हिसाब से। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि जब प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ तो दशरथ जी महाराज 60,000 साल के थे, मध्यम वयस्क थे, थोड़े से बुजुर्ग थे, जैसे कि आज के ज़माने में 60 साल, आज लोग जीते ही हैं 24 साल, तो 60 साल कैसे आएगा। एनीवेज, तो प्रभु के 12 साल की उम्र में दशरथ जी को प्रेरणा हुई कि अभी हम निवृत्त हो जाते हैं और इनको राजा बनाते हैं। अभी 60,000 साल के सम्मुख 12 साल कुछ भी नहीं है, फिर भी निर्णय होता है। और फिर उसमें दशरथ जी सुमंत्र को और अपने सभी महान ऋषियों को जो उनके सलाहकार थे उनको बुलाते हैं और ये निर्णय को पक्का करते हैं और ये निर्णय को बता देते हैं सबको कि अभी ऐसा ऐसा है, मुहूर्त निकालते हैं। और सब लोग कहते हैं जल्द से जल्द करो, ये इतनी शुभ समाचार है, इतनी शुभ कार्य है, इतना लोकवांछित कार्य है कि ये देवताओं को, भगवान को, सबको प्रसन्न करने वाला है, तुरंत इसको आप संपन्न करो। तो मुहूर्त निकाला जाता है और आप कह सकते हैं दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश, कुछ भी कह सकते हैं आप, प्रभु की लीला के परम उद्देश्य के हिसाब से कह सकते हैं कि भरत उस समय अपने नाना जी के पास होते हैं। भरत जी का अपने ननिहाल में बहुत लगाव था, तो बार बार वहाँ जाते थे वो। इसका कारण और एक भी था, ससुराल में। उसका कारण ये था कि जब प्रभु राम का विवाह होने जा रहा था, उन्होंने प्रण जीता, तो दशरथ महाराज फिर आ गए अयोध्या से, बहुत सारी सेना और प्रजाजन, मंत्रीगण और ब्राह्मण जन, गुरुजन, सबको लेकर वो वहाँ पर प्रस्तुत हो गए। और उन्होंने सोचा, डिस्कस किया जनक महाराज के साथ कि इन चारों भाइयों का विवाह किया जाए। तो दशरथ महाराज ने बताया कि आपको और एक कन्या है उर्मिला नाम की, तो उसका भी विवाह होना चाहिए, तो लक्ष्मण जी के साथ उसका विवाह तय होता है। फिर उनके एक मित्र थे और भाई भी थे कुशध्वज, उनको 2 कन्याएं थी, उन 2 कन्याओं का विवाह तय हुआ भरत और शत्रुघ्न के साथ। लेकिन उनको पुत्र नहीं था, केवल कन्या ही कन्या थी। तो बार बार अपने ससुर जी के राज्य को संभालने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जमाई वहाँ जाया करते थे। तो उस समय वहाँ पर थे जब ये निर्णय हुआ, और कार्य की गति ऐसी थी कि वो उनके अनुपस्थिति में ही सबकी सलाह लेकर, ऋषि मुनियों की सलाह लेकर वो तुरंत ही करने का तय हुआ कि भी करना है तुरंत। इसका मतलब कल राज्याभिषेक है और भरत वहाँ पर नहीं है। तो फिर मंत्रा जो कैकेयी की दासी थी, कैकेयी ने उसको कैकेयी देश से लाया था, कैकेयी राज के आदेश के अनुसार मंत्रा उनके साथ में आई थी, और वो कुबड़ी थी और उसका लोग मजाक भी करते थे कभी कभी, उसके साथ प्रेम भी करते थे, लेकिन वो बहुत स्वामीनिष्ठ स्वामिनिष्ठ सेविका थी, बहुत उनको कैकेयी पर प्रेम था। तो ऐसे कहा जाता है कि यहाँ तक रामायण बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है, जन्म हुआ उसका आनंद लोगों ने सबने लिया, फिर यथावकाश कोमल उम्र में उन्होंने 3 राक्षसों का वध किया, कभी युद्ध का उनको अनुभव नहीं था फिर भी उन्होंने भयंकर राक्षसों का वध नहीं किया, 2 राक्षस का वध किया, और मारीच को बाण मारकर 80,000 योजन आकाश में उड़ाकर समुद्र में गिराया और 6 महीने तक वो बेहोश रहा, 6 months he was unconscious। ऐसा पराक्रम किया उन्होंने, तो इतना सबके लिए आनंद की बात है। लौट के आए, फिर वहाँ से मिथिला गए, फिर सबसे सुंदर सबसे सर्वगुण संपन्न सीता देवी जो उनके लिए केवल योग्य थी, उनके साथ उनका विवाह हुआ। अनेकों अनेकों राजा जिसमें अयशस्वी हो गए प्रण को जीतने के लिए, जिसकी वजह से वो प्रण को पूर्ण नहीं कर सके, इसकी वजह से 1 साल तक जनकपुरी में युद्ध ही होता रहा हारे हुए राजाओं का। उनको लगा था कि ये जानबूझ के हमको अपमानित करने के लिए ऐसा प्रण रखा गया है जो किसी के बस में नहीं है पूरा करने का, केवल मजाक उड़ाने के लिए ये व्रत रखा है, ये स्वयंवर रखा है। तो सीता स्वयंवर होने के, राम जी के साथ होने के पहले 1 साल तक तो केवल युद्ध ही चलता रहा, सारे राजा मिलकर जनकपुरी पर आक्रमण किया था उन्होंने। तो कैसे तो मां मैनेज किया उसको और समाप्त हो गया। उसके बाद में प्रभु रामचंद्र का विवाह हुआ, फिर वो बड़े शान से 4 भाई 4 पत्नियों को लेकर परशुराम जी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अयोध्या नगरी पहुँचे, और आगे के साल उन्होंने बहुत ही प्रेम से बिताए, सबका दिल जीता अपने गुणों से, अपने संयम से, अपने संतुलित व्यवहार से, सबको आकर्षित कर लिया उन्होंने। और अभी राज्याभिषेक भी होने जा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। लेकिन कुछ लोग परेशान हैं उससे, वो कौन है? देवता लोग, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा था प्रभु रामचंद्र जी के जन्म के लिए, तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया, ऋष्यशृंग ऋषि ने रोमपाद के जमाई शांता के पिता शांता के पति ऋष्यशृंग स्वामी जी ने मुनि जी ने वो यज्ञ पूरा किया, उसके बाद में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सलाह दिया। उस समय देवताओं ने जाकर ब्रह्मा से तकरार की कि हमारा जीवन बहुत संकट में है रावण की वजह से, पूरा बताया उनको क्या क्या हो रहा है हमारे जीवन में रावण की वजह से, कैसे हम लोग सब लोग भिखारी बन गए हैं, नौकर बन गए हैं, लाचार बन गए हैं, हमारे जीवन में कोई सम्मान नहीं रहा है, सब लोग परेशान हैं। तो उसी समय ब्रह्मा जी कुछ बोलने जा रहे थे, उस समय विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं आप निश्चिंत रहो सब देवतागण, मैं आऊँगा 4 रूप में आऊँगा और रावण का वध करूँगा, आप सब लोग अपने अपने वंश को बंदर और लंगूर और भालू के अंश वंश में प्रकट कर देना। आपको चाहिए ना कि मैं आके मारूं उनको, करो। तो सारे देवता जो है वो भालू लंगूर और बंदर के वानर के रूप में प्रकट हो गए, अलग अलग वंश, उनका बड़ा लिस्ट है उसका बताता हूँ आपको। सूर्यदेव ने सुग्रीव को प्रकट किया वानर के रूप में, इंद्रदेव के तरफ से वाली का जन्म हुआ, बृहस्पति के तरफ से तार का जन्म हुआ, कुबेर के तरफ से गंधमादन का जन्म हुआ, विश्वकर्मा के तरफ से नल का जन्म हुआ, और अग्नि के तरफ से नील का जन्म हुआ, अश्विनी कुमार के तरफ से मैंद और द्विविध का जन्म हुआ, वरुण देव के तरफ से सुषेण का जन्म हुआ, पर्जन्य की तरफ से शरभ का जन्म हुआ, और वायुदेव की तरफ से श्री हनुमान का जन्म हुआ। बोलो श्री हनुमान जी की। इस तरह से देवताओं का अपना प्लानिंग के हिसाब से अनंत असंख्य करोड़ों बंदर जन्म लिए, वृक्ष वंश में, वानर वंश में और लंगूर वंश में। तो देवता लोगों का ये कारण ही था प्रभु के पास जाने का कि आप आइए भाई, ये सब संकट को निस्तार, पूरा विश्व ही नहीं, केवल पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड हाहाकार में अभी इतना आतंक मचा रखा है। तो हाउ दे विल लाइक दैट एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, और रावण अपना अपना काम कर रहा है, हम लोग वैसे ही लाचार हैं। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, अभी तो एकदम रामायण स्मूथ जा रहा है एकदम हमारा काम कब पूरा होगा, जिसके लिए हमने इतना तड़प तड़प के पुकार किया था उनको, उन्होंने वादा भी किया था। तो देवताओं ने जाकर मंथरा की मति पहले भ्रष्ट कर दी। शास्त्र बताते, आचार्य समझाते हैं कि देवताओं ने जानबूझकर मंथरा को अपना प्रतिनिधि बनाया, उसकी मंत्री मति भ्रष्ट करके पूरा दूषित कर दिया। तो जब ये आज आखिरी दिन है और कल राज्याभिषेक होने वाला है, तो मंथरा जाती है अचानक छत पे देखने के लिए, तो क्या देखती है, पूरा राज्य जो है वो आनंद मना रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पूरा राज्य आनंद मना रहा है, सब जगह पताका, सब जगह सुगंधित द्रव्य, सब जगह हाथी पे बैठकर मिठाई बांट रही है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सब लोग दूर दूर गांव से अयोध्या के रास्ते पर आए हुए हैं, रास्ते में कोई जगह नहीं है और वहां पर सब लोग नाच रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, इतना सुंदर आनंद का वातावरण देखते हैं वो। और क्या देखती है वो, कौसल्या देवी सब लोगों को दान कर रही है। सबसे अधिक उसको कष्ट होता है उसका, कि आज तक ये प्रधान कार्य था वो कैकेयी के पास भी था, सबको दान देने का राज, वो देख रही है कैकेयी खुले हस्त से सब लोग को दान दे रही है। तो खुशी होने के बदले में, सबके हृदय में खुशी पैदा करने की समर्थता रखने वाला जो दृश्य था, उसके मन में हलचल मचा दिया उसने। बड़े दुख से क्रोधित होकर लाल आंखें लेकर वो कैकेयी के पास आई, और कैकेयी उस समय थोड़ा सा हल्का विश्राम फरमा रही थी। तो जाकर के मूर्ख औरत सो रही है, जब उसका विनाश का समय आ गया है, विनाश के समय में केवल मूर्ख ही सो सकता है, जाके इसके पैरों को दबाती है, उसको जगाती है, कहती है हे मूर्ख औरत। अभी आप कहेंगे दासी ऐसे कैसे बोल सकती है, वो कैसे है, जब कैकेयी गोद में बसने वाली लड़की थी तब से वो उनकी सेवा कर रही है। कभी कभी ऐसी सेविकाएं माँ की तरह होती है, हाँ वो कुछ भी कह सकती है, लेकिन दासी रहती है, लेकिन फिर भी प्रेम से वो हित के कारण, उनको लग रहा है कि मैं हित कर रही हूँ, तो उसकी वजह से उसको बोलते हे मूर्ख औरत उठ जा, सोने का समय नहीं है, तेरा विनाश का काल आ गया है। तो बोले क्या हो गया, दशरथ महाराज ने तय कर लिया है कि रामचंद्र प्रभु का राज्याभिषेक होगा। तो तुरंत वो गले का हार निकाल के, रत्नों का हार ले ले, मंथरा तुमने मुझे आज इससे इतनी बड़ी खबर सुनाई है, आज तक मेरे पूरे जीवन में इतने आनंद की खबर मैंने नहीं सुनी है, देयर इज नो बेटर न्यूज इन माय होल लाइफ आई हैव हर्ड लाइक दिस। तो वो मंथरा जो है ना, वो इतने कीमती जो मूल्यवान हार है उसको तोड़कर जमीन पर फेंक देती है, पूरे महल में उसके मणि रत्न बिखर जाते हैं, आप सोच सकते हैं। मंथरा तुम मूर्ख हो गए क्या, तेरा दिमाग मति भ्रष्ट हो गई है, क्या कर रही है तू, इतनी खुशी के समय पर तू ऐसा अशुभ वर्ताव क्यों कर रही है। वो कह रहे हैं कि अशुभ वर्ताव मैं नहीं कर रही हूं, तुम कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम कितनी खुश है, कितनी मूर्ख हो तुम खुश होने में, तुमको तो दुखी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जानती नहीं हो, मैंने देखा कि वहां पर कौशल्या दान धर्म कर रही है, इसका मतलब तू अभी दासी बनेगी कौशल्या की। हाँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ संक्षेप में, क्योंकि शुरू में जब कौशल्या जब कैकेयी को बताती जा रही है कि कितने अशुभ समाचार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे विनाश का समाचार है, बोले वो बोल रही है मंथरा तू मूर्ख व्यक्ति है, तुझे पता नहीं है कि मैं मेरे भरत से भी अधिक राम पर प्रेम करती हूँ, और भरत से भी अधिक राम मेरी सेवा करता है, और मुझे परवाह नहीं मेरे पति मुझको अधिक प्रेम करते कि कौशल्या अधिक प्रेम करते, हम सब लोग बहने हैं, हमारे मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं आया, तो ऐसे विचार क्यों कर रही है, मुझे इतनी खुशी है कि मेरा भरत राम का दास बना रहे और उनकी सेवा करते जैसे वो अभी तक करते आया, और इसका ये अहोभाग्य होगा ये। तो जैसे ये वाक्य बोलते जा रहे हो वैसे मंथरा वो और कुपित होते जा रही है। फिर कहते कैकेयी मैं भी तुझे तीन कारण बताती हूँ जो तेरे होश उड़ा देंगे, ध्यान से सुनना। फिर तय करना क्या करना है। वो कहते आज तक तुम्हारे सौंदर्य में मोहित होकर राजा के पतरानी की तरह तुम थी, सब कोष तुम्हारे हाथ में था, सब अधिकार तुम्हारे हाथ में था। आज से मैं देखा ऊपर से कौशल्या सबको दान दे रही है, इसके अगर किसी को दान देना होगा तो कौशल्या को आपको भिक्षा मांगनी होगी, उसकी परमिशन लेनी होगी। पता जानती हो तुम्हारे लेकिन लाचारी होगी इस बात की। तो तुम्हारा एक तो है तुम्हारा हित, तुम्हारा अहित होने वाला है। तुम्हारा जो पद है राजा के मन में वो आज नंबर टू का होने वाला है, और कौशल्या देवी जो है राजमाता बनेगी क्योंकि उसका पुत्र, आप जानती नहीं हो तुम इतनी सुंदर थी इसके वजह से तुम पर राजा प्रेम करते थे और कौशल्या को उतना समय नहीं दे पाते थे, प्रेम तो था उनका, इसलिए कौशल्या ने जानबूझकर अपने पुत्र को इस तरह से रखा है कि वो मेरे पति के अति प्रिय हो जाए। स्ट्रैटेजी, ये कोई स्वाभाविक बात नहीं है, ये उनकी योजना है जिसके वजह से उन्होंने जानबूझकर अपने प्रभु पुत्र राम को सदैव अपने पिता के पास रखकर उसको आसक्त बना दिया है। उसी की वजह से आज उन्होंने ये निर्णय लिया है राम को राजा बनाने का, ताकि वो राजमाता बने और वो प्रिय माता बने और सारा अधिकार उसके हाथ में आ जाए और तुम दुय्यम रानी बनोगी और उसके बाद में उसकी सेविका बनोगी और भिक्षुक बनोगी, तुम्हारा सर्व विनाश होगा। ये नंबर वन। और दूसरा कारण है कि इस ऐसा करने, पहला कारण हो गया, इसके करने से तुम मरना पसंद करोगी, इस तरह से लज्जित जीवन जीने के बदले में तुम मरना पसंद करोगी, तुम्हें पता नहीं आज आगे भविष्य में क्या होने वाला है। दूसरा कारण यह है तुम्हारे पुत्र का हित, आप जानते हो यह षड्यंत्र ऐसा है कि जानबूझकर भरत को ससुराल के राज्य में भेजा गया है ताकि उसके मन में कोई मौका ही ना मिले उसको सोचने का, उसके ना होते हुए यज्ञ करके राज्याभिषेक करके राजा बना देना है ताकि फिर आगे उसको भी दास बनना है। तुम दास ही बनोगी, तुम्हारा पुत्र दास बनेगा, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं रहेगा पूरे अयोध्या के अंदर। इसलिए दशरथ ने जानबूझकर कौशल्या के साथ मिलकर ही षड्यंत्र बनाया है। और तीसरा हित तुम्हारे पिता का है, कैकेयी राज का। बोले कैसे, उसका क्या संबंध है उसके अंदर? बोलते बहुत सालों से जनक महाराज और तुम्हारे पिता कैकेयी राज इनका वैर है, और जनक राज कोशिश कर रहे हैं कैकेयी राज में तुम्हारे पिताजी का राज्य को पदाक्रांत कर लें, आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लें। लेकिन जब तक तुम दशरथ राजा की प्रिय पत्नी हो तब तक वो ये नहीं कर सकते। जब सीता का विवाह राम से हुआ तब उनका पोजीशन और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र की कन्या के पिता जनक राज हैं। ये सब मंत्रा उसको बता रही है। सोचो आप, सी हाउ वन कैन थिंक नेगेटिवली, हाँ कहाँ किस हद तक जा सकते हैं आप सोचने में ही एक के बारे में अगर सोचना है कि ये बुरा है तो आप कहाँ तक जा सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि अभी सीता का विवाह राम से हुआ, अभी राम जब राजा बनेगा तो सीता पटरानी बनेगी, मतलब क्वीन रानी बनेगी वो, तो जनक महाराज की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी और राम के सहायता से वो तुम्हारे पिता के राज्य पर आक्रमण करेगा और तुम्हारा पिता का राज्य भी हड़प लेगा और तुम्हारा पिता भी कहीं का नहीं रहेगा। आप सोच रहे हो, आपका समूल विध्वंस करने की योजना है ये। आप ना मैके से बलवान रहोगी, ना ससुराल से बलवान रहोगी, ना पुत्र से बलवान रहोगी। एक स्त्री का बल कहाँ होता है? एक पति के क्षेत्र में होता है, एक पिता के क्षेत्र में बचपन से होता है, फिर उसके बाद जवानी में पति के क्षेत्र में होता है और बुढ़ापे में पुत्र के क्षेत्र में उसका बल होता है। तुम्हारे तीनों बल क्षेत्र नष्ट किए जा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम मूर्ख हो। उस समय जो विष कैकेयी दशरथ कैकेयी के मन में बुद्धि में मंत्रा डालने का प्रयास कर रही थी, जो वो अपयश प्राप्त कर रही थी, इन तीन चीजों को जब उसने बड़ी सावधानी से समझाया तब अचानक कैकेयी खड़ी हो गई। तब तक वो एक्चुअली जब वो कह रही थी मंत्रा पीछे से, तब तक आईने में देखकर कैकेयी अपने आप का श्रृंगार करने में व्यस्त थी, क्योंकि उसको तुरंत तैयार होकर शाम के यज्ञ में जाना था, प्रभु राम के यज्ञ के राज्याभिषेक के रूप में जो यज्ञ हो रहा है उसको जाने के लिए वो तैयारी कर रही थी। इस तीन बातों के ऊपर उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया और वो तुरंत टर्न हो गई और खड़ी हो गई और कांपने लगी उस विचार से। तो कहती है मंत्रा, अब बताओ मुझे करना क्या है, तूने बता तो दिया, मैं समझ गई करना क्या है? तो कहते रानी तुरंत ये श्रृंगार उतारो और काले वस्त्र पहनकर श्रृंगार रहित होकर बालों को छोड़कर अपने महल के नीचे चले जाओ, बेसमेंट में जहाँ पर कोप भवन है, क्रोध भवन है, वहां पर जाकर जमीन पर लेटो और ये खुशखबरी सुनाने के लिए राम के राज्याभिषेक की, तुम्हारे पति आएंगे तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे महल में नहीं पाएंगे। दासियां कहेंगी महारानी रानी कहाँ है, वो कहेंगे कोप भवन में चली गई है, तो वो बड़े आतुर होकर भाग भाग के आएंगे, ये कैसा शुभ घड़ी में कोप भवन में क्यों जा रही है। और वो भाग भाग के बहुत तेजी के कदम लेकर वो कोप भवन में आएंगे और आप तभी जमीन पर मिलेगी उनको, आपका मुंह उनके दरवाजे की उल्टी तरफ होगा और जैसे ही उनके पैरों की आवट आएगी आप जोर जोर से सिसकियां देकर रोना, फिर वो और व्याकुल हो जाएंगे, फिर आप और जोर से रोना, फिर वो पूछेंगे आपका अनुनय विनय करेंगे, बताओ रानी क्या हो गया, बताओ क्या आपकी इच्छा है, मैं आपकी जान तक मैं आपके चरणों में दे सकता हूँ, आप खाली बोलो आपको क्या चाहिए। फिर आप खड़े हो जाना और स्थिर भाव से उनसे वर मांगना। बोलो कैसा वर, कौन से वर? तो मंथरा उसको याद दिलाती है कि पता है उन कई सालों पहले ऐसे ऐसे हो, मैं तो भूल गई थी मुझे याद भी नहीं, आज ये वर मांगने का समय है। अभी कर क्या वर मांगू, इतनी मतलब कह के है ना, इतनी सरल हृदय थी, उसके मन में इतना सा भी कपट कभी नहीं था। लेकिन कुसंगति ऐसी होती ना, कुसंगति ऐसी होती है कि निर्मल गंगा जल से जैसा स्वच्छ अगर आपकी चेतना है तो कुसंगति से वो दूषित हो सकती। सबसे बड़ा योग मनुष्य जीवन में सत्संगति है और वो अगर नहीं मिलती है और अगर हम कुसंगति में चले जाते हैं तो हमारा विनाश निश्चित है। और इतना सुनहरा मौका जो मिला हुआ है मनुष्य जीवन का भगवान की प्राप्ति करने का, वो हम खो बैठ सकते हैं। और कुसंगति बहुत आसान से मिल सकती है, सत्संगति मनुष्य जन्म जितना दुर्लभ है उससे भी अधिक दुर्लभ, अति दुर्लभ क्या है, सत्संगति। और वो महत प्रयास से मिलती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, वो कभी कभी कृपा के रूप में हमारे दरवाजे पे चली आती है, लेकिन अधिक समय पर हमको प्रयासपूर्वक सत्संग में जाना होता है और मति शुद्ध करने का प्रयास होता है। और इसके बीच में कुसंगति हमारी ओर हमेशा मंडराती रहती है और हमको प्रयत्नपूर्वक उसको ना कहना पड़ता है, नो आई विल नॉट एसोसिएट विद बैड पीपल और एवर्स टू द लॉर्ड, भगवान से विमुख होने वाले लोगों का संग मैं नहीं करूंगी, ऐसे प्रयत्नपूर्वक बोलना पड़ता है। लेकिन जब सत्संगति नहीं हो पाती है और कुसंगति हावी हो जा रही है, उसमें बड़ा आध्यात्मिक जो अंदर का शक्ति है ना, वो आवश्यक होता है ना कहने के लिए। लेकिन अधिकतर गाफिल क्षणों में, हाँ, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ऑफ लाइफ, कुसंगति इस प्रकार से आ जाती है, कुछ समझने के पहले ही आप उसके हावी हो जाते हो, वो उस पर आपके ऊपर हावी हो जाती है, आपको प्रभावित कर देती है और उसके बाद में आप क्या करते हो आपके समझ में नहीं आता है कि कैसे हुआ ये सब कुछ। ऐसे एक अनजान स्वर में, अनजान क्षण में जब वो सो रही है, आराम फरमा रही है, फिर खबर सुनती है और खुश हो जाती है, क्योंकि उसका हृदय इतना सीधा साधा है, सरल हृदय है वो, कि उसको पता ही चलता क्या हो रहा है एक्चुअली। और वो उस कुसंगति को तोड़ नहीं पा रही है, वो उसकी एक बार वो तीन कहानियां सुनाने के बाद में वो कन्विंस हो जाती है, फिर सारा आगे का जो है बह जाती है वो। जैसे पहाड़ के ऊपर चोटी पर पहुंचने के बाद एक बार फिसलन शुरू हो गई तो बीच में रुकना मुमकिन नहीं होता है, आपको तल पे ही जाके पहुंचना है। उस तरह से वो एक एक कदम करके पूरा विध्वंस के अपना उस संगति के प्रभाव से आगे बढ़ती रहती। तो फिर वैसे ही होता है, दशरथ महाराज भाग भाग के आते हैं और वैसे ही होता है, वो कुप भवन में लेटी हुए काले वस्त्र पहनकर श्रृंगार उतार के बाल छोड़कर और जोर जोर से रोती है। फिर दशरथ महाराज उनको इतनी विनती करते हैं, बताओ रानी क्या करूँ आपके लिए मैं, आप बताओ। तुरंत खड़ी हो जाती है और एकदम स्थिर नेत्रों से और स्थिर शरीर बोली से, देह बोली से खड़ी हो जाती है उनकी तरफ पीठ करते हुए। वो पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं रानी को मनाने के लिए, उसकी और पीठ करते हुए उंगली उठाकर कहती है, भरत को राजा बना दो और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। ये सुनकर ही दशरथ बेहोश हो जाते हैं, लाइक थंडर बोल्ट, वज्राघात है उनके हृदय के ऊपर, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते वो इस बात की। पर बड़ी लंबा प्रसंग है, उसमें बहुत संवाद होते हैं, उसमें फिर दशरथ जी कहते हैं कि प्लीज आप, जहां तक भरत को राजा बनने का सवाल है, राम बड़ी प्रसन्नता से उसका दासत्व स्वीकार करेंगे, मेरे राम इतने उच्च लक्षणी है, उच्च गुण संपन्न है कि उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन राम को क्यों वनवास भेज रहे हो आप? लेकिन मंत्रा ने पहले ही बोल दिया था ऐसे तुम्हारे पति कहेंगे, लेकिन उनको नहीं बोलना है उसको। तो वो बोले उसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि राम इतने लोकप्रिय है अयोध्या में, वो प्राइवेट में बता रही है उनको, इतने लोकप्रिय है कि अगर राम वहां पर रहते हैं, अगर राजा नहीं होते हुए भी, तो राम की लोकप्रियता कभी भी दशरथ भरत को लोकप्रिय बनने नहीं देगी। और आज बार बार अपने ससुराल के राज्य को संभालते हुए ना होते हुए जो दशरथ ने जो अपना मौका खोया है अयोध्या के लोगों के ऊपर हृदय पर राज करने का, उन पर लोकप्रिय बनने का, वो मौका तभी मिल सकता है जब वाम अयोध्या से दूर होंगे। तभी 14 साल के पर्याप्त काल में भरत बड़ी ही कुशलता से यश प्राप्त कर सकते हैं लोगों का दिल जीतने में। फिर उसके बाद अगर राम लौट के भी आएंगे तो भी इतना उनका प्रभाव नहीं होगा, ऐसी योजना होती है। देखो जब तक राम वहां रहेंगे तब तक भरत कभी भी अयोध्या लोकप्रिय नहीं हो सकते। तो बार बार गिड़गिड़ाए हैं, बोलते मैं चरणों में गिर सकता हूं, मैं आपका दास बन के रहूंगा, लेकिन कृपा करके मेरे राम को आप वन में भेजने का प्रण मत रखना। कहते हैं आपने कहा कि जो चाहे मांग लो और मैं रघुवंशी हूं उसको पूरा कर लूंगा, अभी मैंने कह दिया है अगर नहीं मानना है मत मानो, आपके वंश की लाज आपके हाथ में है। आप लोग सत्य वचन ही करके बड़े बखान करते हो, कहां गए आपका सत्य वचन पढ़ना? आप बड़ा गौरव करते हो अपनी पीढ़ियों से और आप उनके वंशज हो, उनके प्रतिनिधि हो रघुकुल के, और बड़े जोर जोर से बखान करते हो अपने सत्य वचन का, वचन पालन करने का, कहां गया आपका वचन आज? आज पुत्र प्रेम की वजह से आप इतने दुखी हो और अपने प्रण से भी हट रहे हो। कोई बात नहीं, नहीं चाहिए मत दो मुझे वर्ण, मैं आपने मांगा इसलिए मैंने बोला। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो फिर वो गिर जाते हैं, गलित गात्र हो जाते हैं, उनके स्नायुओं में हाथों में बल नहीं होता है, नदियों की तरह अश्रु बह रहे उनके। और कहते हैं अभी अभी राम को बुला लो और अभी कभी कह दो, तो वो तो बोलने के लायक भी नहीं है, वो तो इतने गदगद हो रहे हैं, रो रहे हैं। दशरथ जी की स्थिति को देखो आप हंसो मत, विचार करने का प्रयास करो, एक पति के, एक पिता के हृदय पर कैसा आघात हो रहा है जो प्रभु पर प्रेम करते हैं। तो फिर किसी को दासी को भेज दिए, अतः प्रभु जो है वो शुभ स्नात होकर यज्ञ में बैठने जा रहे हैं, सीता देवी यज्ञ में बैठने के लिए तैयार हो रही है। तो प्रभु को मैसेज मिलता है तुरंत आपको कैकेयी माता अपने भवन में बुला रही है। तो प्रभु तुरंत चले जाते हैं और उनको लगता है कि आशीर्वाद देने के लिए बुला रही है, क्योंकि राजा होने वाले हैं कल, इतनी प्रिय माता है, इतनी उनका प्रेम का संबंध है, कसला से अधिक उनको प्रेम करते हैं। देखते तो पिताजी जो है जमीन पर पड़े हुए हैं, अश्रुओं की नदी बहा रहे हैं, सिसकियां भर भर के बच्चे की तरह रो रहे हैं, और माता काले वस्त्र पहनकर निरश्रृंगार होकर उल्टा चेहरा करके एकदम स्थिर और निश्चयपूर्वक खड़ी है। तो कहती माता पिता को कहा क्या हुआ? तो कहती है पिता को जो आपको कहना है वो कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं जो कह रही हूं वो सुनो, तुमको वनवास जाना है और मेरा पुत्र राजा बनेगा, ये उनकी इच्छा है, ये वरदान उन्होंने मुझे दिया है। तो अभी प्रभु रामचंद्र, मैंने आपको मर्यादा की बात की ना, मर्यादा के ऊपर से डिस्कशन शुरू हुआ, तो प्रभु रामचंद्र के लिए ये बातें कैसी लगी और प्रभु रामचंद्र ने उसका क्या उत्तर दिया वो आप सुन लीजिए। प्रभु राम बोलते हैं, प्रभु राम को पहले वो बोलती है कि आपके पिता जो है वो दुविधा में है, कैसे कहें इस बात को, वरदान तो दे दिया है, कैसे कहें दुविधा में है। इसलिए राम तुम कितने योग्य पुत्र हो ये साबित करने का समय आ गया है। बहुत समय पहले आपके पिताजी ने दो वरदान दिए थे, मैंने आज तय कर लिया है कि उसको ले लूं। वो बड़े उत्सुक नहीं थे इस वरदान को देने के लिए, क्योंकि आपको क्या लगेगा राम, इसके लिए वो चिंतित थे। इसलिए अगर आप वादा करते हो कि जो भी आपको कहा जाएगा आप स्वयं का लाभ और हानि ना सोचते हुए उसको पालन करोगे तो ही मैं जो ये कह नहीं पा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। शास्त्र में लिखा है कि धर्म और सत्य वचन और एक आदर्श उदाहरण होना हर एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। इसलिए राम, अभी ये जो दो वरदान मुझे इन्होंने दिए हैं, आपके ऊपर है कि आपके पिता का शब्द पालन करना है कि नहीं करना है। और ये दो जो वरदान मांगे हैं वो बताने के बाद में ये बोल रही है। तो प्रभु रामचंद्र जो है उसको दुख होता है। अभी आप सोचिए, आपके सबके मन में होगा, दुख होगा क्योंकि कल राजा बनने वाले थे, आज आप उनको शौक दे रहे हो, लेकिन दुख उनका उस बात का नहीं हुआ। देखो क्या बोल रहे हैं वो, प्रभु राम का चरित्र जो है वो इतना श्रेष्ठ है, इतना विचार करने योग्य है। वो कहते हैं, माता मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा इस पर आप अविश्वास दिखा रही हैं। मुझे इस बात का दुख है कि आपने मुझे आज तक समझा ही नहीं। इतने दिनों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मुझे दुख इस बात का है कि आपको संशय मन में हो रहा है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा कि नहीं करूंगा। माता जी, इतनी सी बात है, मुझे खुशी है कि मेरा भरत राजा बनेगा। मुझे खुशी हो रही है कि मैं कई दिनों से, जब से मैं समझने लायक हो गया हूँ, तब से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे संतों का संग कैसे मिलेगा। और आज आपकी इस आज्ञा से मेरे उस इच्छा पालन करने का पूरा मौका मेरे सामने प्रकट हो गया है। लेकिन इतनी सी बात करने के लिए आप ये पिताजी को दुख देकर उनके द्वारा बुलवाने का प्रयास, आप मुझे केवल संदेश भेजते, राम आपको जंगल जाना है, मेरा पुत्र राजा बनेगा, वो भी काफ़ी था। माता, आपने इतना सब कोप भवन निश्रृंगार होकर मेरे पिताजी को इतना कष्ट हो रहा है, ये सब क्यों किया आपने? लेकिन शांत हृदय से उन्होंने ये कहा सब कुछ, बिना कैसे समुद्र जैसे बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत संकट आ रहा है, ऐसे नहीं, शांत मन से कहा। और एक ही क्षण में वहां से जाने लगे वो। अभी उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी आए थे, लक्ष्मण जी वही जाने लगे, तुरंत छत्र और ये लेकर उनके पीछे बोलने लगे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण छत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण यहां पर कांप रहे हैं क्रोध से, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूं मैं, अभी बहुत क्रोध हो रहा है उनको। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके जलते हुए दावानल के सामने एक शांत समुद्र चल के जा रहा है, प्रभु राम के नाम का, प्रभु राम के रूप का, समझ रहे हैं? एक जगह दावाग्नि जल रही है और वो आपको भी जला सकती है अगर आप उसके पास में से गुजरे, लेकिन एक शांत सागर शीतल जल का उनके सामने से गुजर गया, अनअफेक्टेड, अविचलित। और जो लक्ष्मण के क्रोध, वही दावानल को भी एक तरह से उसमें अप्रभावित कर रखा, इन इफेक्टिव करके रखा उसने। फिर लक्ष्मण जी भाग भाग के पीछे जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि आज लक्ष्मण जी उनको छत्र नहीं पकड़ के जा रहे हैं, तो लोगों को भी समझ में आया। सुमंत्र कांप रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, सब जनता देख रही है। फिर प्रभु जी जाते हैं अपनी माता के पास और ये खबर सुनाते हैं कि मैं अभी वन में जा रहा हूं। तो माता का हृदय टूट जाता है। तो माता को क्या बोलते हैं आप सुनिए ठीक से। वो कहते हैं कि माता, एक दुख की बात नहीं है, इसमें दुख करने का कोई कारण नहीं है। जिसमें मेरे पिताजी का आनंद है, इसमें राज्य का हित है, जो निर्णय लेते हैं वो प्रजा के हित में लिया होगा उन्होंने। अगर मेरे प्रिय भरत राजा बनेंगे, भरत के व्यक्तित्व पर मुझे पूरा विश्वास है, भरत कुछ कम नहीं है अयोध्या का राज संभालने के लिए, सद्गुण संपन्न है, समर्पित है वो, तो मुझे पूरा कोई दुख की बात नहीं है। मेरे मन में संतों के संग में जंगल में रहने की बहुत इच्छा थी और ये तो अयोध्या के राजा बनने का प्रण था, मैं तो विशाल विस्तृत जंगल का वन का राजा बनने वाला हूँ। वहाँ पर मैं संतों की सेवा करूँगा, उनका जीवन में उनका श्रवण करूँगा, उनका सुरक्षा की व्यवस्था करूँगा, जीवन कितना आनंदमय होगा। इसलिए आप कोई दुख करने की बात नहीं माता। तो प्रभु रामचंद्र का चरित्र जो है उसमें एक संतोष, एक प्रधान उनका चरित्र है। संतोष यानी ऑलवेज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ, चाहे किसी प्रकार का प्रसंग हो। लेकिन प्रभु रामचंद्र ने अपनी माता के सामने अपने संतोष का प्रकट किया है। इस समय माता को उन्होंने बड़ा शांत कर दिया, उसके उद्वेग को शांत कर दिया। फिर वो सीता जी के पास गए और उनको कहा कि सीता जी, अभी आप यहीं रहो, मेरी माता की सेवा करो, मेरे पिताजी भी दुखी रहेंगे, उनकी भी सेवा करो, और मुझे वन में जाने का आदेश दिया है। तो सीता जी कहते हैं मैं भी आपके संग चलूंगी। बोले सीता तुम क्या कह रही हो, जंगल में हिंस जानवर होते हैं, राक्षस होते हैं, वहाँ पर नंगे पैर चलना पड़ता है, वहाँ पर वृक्ष की खाल जो है वलकल पहनना पड़ता है, वहाँ पर कांटों में आपके कोमल चरण कमल आज तक जमीन पर स्पर्श नहीं किए हैं, केवल मखमल पे चले हुए हैं। राज दरबार में आपके पिताजी ने आपको अपने राज्य में इतने सुंदर तरीके से रखा था, अयोध्या में भी आप आज तक जमीन पर पैर नहीं रखी हो, आपके इर्द गिर्द दासियाँ घूमती रहती हैं, आप कितना उच्च प्रकार का अन्न प्राशन करते हो, ऐसे सुकोमल अंग वाली आप जंगल का जो जो आतंक है उसको कैसे आप झेल सकती हो, आपसे नहीं होगा ये, आप यहीं रहिए और आपके लिए कर्तव्य भी यहाँ पर है, मेरे ना होते में मेरे पिता और मेरी माता की रक्षा कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। तो सीता देवी भी अपना जो चरित्र है उसका उच्च प्रकट यहाँ पर करती है प्रकटीकरण। तो कहते हैं प्रभु जब मेरा मिथिला में विवाह हुआ था मेरे पिताजी के राज्य में मेरे पिताजी के सामने मैंने विवाह के फेरे करते हुए वचन लिया था कि सुख में और दुख में आपके साथ रहूंगी। आज तक आपने इतना सुख मुझे दिया है, आपकी पत्नी होने का भाग्य मुझे प्राप्त है, हर प्रकार का ऐश्वर्य हर प्रकार का सुख आपके वजह से मुझे प्राप्त हुआ है। आज आपके जीवन में जंगल का वास आने वाला है तो मैं राज्य में रहूं और राज दरबार का आनंद भोगूं, कैसे हो सकता है। मेरे पति को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, पिता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, पिता के सामने जो वचन दिया था उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या उसका मूल्य होगा। वो कहती है सुख हो या दुख हो जहां पर आप हो वहीं पर मेरे लिए अयोध्या है और वहीं पर मेरे लिए सुख है। सारा ऐश्वर्य मेरा आपके चरणों में है, आपके चरण अगर जंगल के पत्थर में और कंकण में रहेंगे वही मेरी अयोध्या है और वही मेरी मखमल है, और जंगल के कंदमूल जो होंगे वही मेरे लिए पंच पकवान होंगे, जंगल की पंच पर्णकुटी मेरे लिए राजमहल की तरह होगी, आपका संग मेरे लिए अयोध्या का पूर्णता से आनंद पूर्वक वास देगा। इसलिए मैं किसी भी कारण से किसी भी स्थिति में आपको छोड़कर नहीं रह सकती, मैं भी आपके संग जा रही हूं। प्रभु रामचंद्र सीता जी का ये भाव देखकर बड़े हृदय से प्रसन्न हो गए, वो एक तरह से उनकी कसौटी दे रहे थे, उनका गौरव विश्व के सामने प्रकट करने का प्रयास कर रहे थे कि सीता जी का चरित्र क्या है। फिर लक्ष्मण जी वहां से आते हैं तो मैं भी आपके संग जा रहा हूं, वो तो क्रोध मिश्रित है, इज एंग्री ऑल्सो। बोले आज से वो सुमंत्र से मैसेज भेजते हैं दशरथ को, सुमंत्र जी आर्य सुमंत्र जी मेरे पिताजी को बता देना कि आज के आगे आप मेरे पिता नहीं होंगे, आज मेरे पिता भ्राता बंधु सखा सब कुछ राम होंगे और मेरे लिए कोई भी नहीं होगा, भेज देना संदेश मेरे पिताजी को, आज मैं मेरे पिताजी की तरफ से जो आसक्ति है उसको तोड़ रहा हूं और मेरे ज्येष्ठ भ्राता प्रभु रामचंद्र के चरणों में मेरे जीवन को समर्पित कर रहा हूं, मेरे अस्तित्व को अस्तित्वहीन करूंगा मैं अपने आप को, उनके संग में रहूंगा। वो अपनी पत्नी को मिलने जाते हैं तो पत्नी कहती है प्रभु मतलब अपने स्वामी को कहती है नाथ आप जाइए और मैं आपको विनती करती हूँ कि एक भी क्षण मेरी याद मत करना आप वहाँ पर, ताकि आपकी सेवा में जो प्रभु की होने वाली है उसमें बाधा ना आ जाए। उर्मिला को उनकी माता भी यही बताती है कि आप किसी प्रकार से अपने स्वामी के प्रभु की सेवा के बीच में बाधा न बनना। इस तरह से एक व्यक्ति को आदेश दिया गया था और तीन व्यक्ति अभी जाने को तैयार है, वो भी तुरंत ही वह राजवस्त्र उतार कर अलंकार उतार कर वलकल पहनकर जटा धारण करके निकल रहे हैं नंगे पैर। अभी आपको मैं एक प्रसंग बताता हूं इसमें कैसी मर्यादा का पालन किया गया है। जंगल में जब रामचंद्र प्रभु और सीता देवी पर्णकुटी में रहा करते थे तो हर जगह पर ऐसे नहीं कि एक जगह बना दिया तो वहीं रह गए, ऐसे नहीं, तीन तीन दिन में बदलना था। वो कोई भी नदी का किनारा कोई भी पेड़ के छाया उनको अच्छी लगने का सवाल नहीं है, आपको बदली करना है उसको, उस पेड़ के फल भी अच्छे हैं छाया भी अच्छी है और पेड़ भी पानी भी अच्छा है, यहाँ पर ये अच्छी जगह है यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। वनवास का वो नियम नहीं है, हर तीन दिन में आपको बदली करना है जगह, आपकी नंगे पैर चलना है, नई जगह पर बसना है जो आने वाले संकट को सहना है। तो नए जगह 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 पर लक्ष्मण जी दिन भर उनकी सेवा करते थे, घर बनाना भी है, कंदमूल चुन के भी लाना है, जल नदी का जल भी लेके आना है, पर्णकुटी बनाना भी है, पर्णशैया बनानी है, उनको रात को सोने के समय मसाज भी करना है और उनको सोने के बाद में फिर रात भर पहरा देना है। बहुत साल बीत गए और रात को सोए नहीं। सुमित्रा ने उनको आदेश दिया था ये कि रात को सोना नहीं, प्रभु की सेवा करना, दिन भर सेवा करना दास के रूप में, रात भर पहरा देना, बैठना नहीं जगह पर कभी, या तो विरासन में आधे बैठना है अलर्ट में, या तो घूमना है, धनुष को ताने हुए घूमना है आपको। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे आएगा तो देखेंगे राक्षस, ऐसा नहीं। विजिल, विजिल मतलब क्या? एक्टिव विजिलेंस। तो निद्रा देवी एक बार आती है, निद्रा देवी, और निद्रा देवी लक्ष्मण को कहती है, लक्ष्मण मैं आपको बता रही हूँ, मेरे प्रभाव से आज जंगल का हर एक प्राणी सोया हुआ है, जिसके जिसके तरफ से आपको लगता है प्रभु संकट में है तो मुझे रक्षा करनी चाहिए, जो कोई जानवर वगैरह है, सब हिंस प्राणी सोए हुए हैं, सारे राक्षस भी सोए हुए हैं, और तुम्हारे नाथ सीता और राम भी सोए हुए हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप सो सकते हो, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, आप कोई चिंता की बात नहीं, मैं इसका नियंत्रण कर रही हूँ कि सब लोग सो रहे हैं। तो निद्रा देवी को कहते हैं कि नहीं मैं सो सकता, आई एम सॉरी। तो निद्रा देवी कहती है कि मुझे आपको वरदान देना है, आपको जो वरदान लेके ही मैं लेके ही आप में जाऊँगी। वो कहते हैं एक काम कीजिए, आपका वरदान खाली जाएगा नहीं, आप अयोध्या में जाइए और मेरी पत्नी उर्मिला से मिलिए, वो भी नहीं सो रही है, उसको जाके मिलिए। तो निद्रा देवी वहाँ पहुँचती है, तब उर्मिला देवी जग रही है, निद्रा देवी कहती है कि आप सो जाइए, सब कुछ आल बेल है, एवरीथिंग इज फाइन, यू जस्ट टेक रेस्ट, आप नहीं सो रहे हो। तो वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं सो सकती, जब मेरे पति जग रहे हैं प्रभु की सेवा में मैं नहीं सो सकती। तो फिर वो कहती है कि मुझे वरदान देना है आपको, तो कहते वरदान देना है तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे पति को मेरी कभी भी एक क्षण के लिए भी याद ना आ जाए जंगल में जब वो सेवा कर रहे हैं प्रभु राम की। देखिए एक मर्यादा और एक त्याग का उदाहरण है सब लोग, ये और भरत का त्याग का उदाहरण क्या है, भरत की मर्यादा क्या है, देखो आप वो जाते जंगल में उनको, क्योंकि लौट के आते देखते सब कुछ क्या हो गया इधर, व्हाट इज हैपनिंग, पिताजी का देहांत हो गया और सब लोग घूर घूर के देख रहे हैं उसको, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि इसकी वजह से, इसका बिना हाथ होते हुए ये सब षड्यंत्र नहीं हो सकता है, सारे अयोध्यावासी उसका दुश्मन बने हुए हैं, उसको मनी मन शाप दे रहे हैं कि हमारे प्राणनाथ रघुकुल नंदन रामचंद्र भगवान जंगल में भेजे गए इसकी वजह से, बिना इसके षड्यंत्र के सहयोग के कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये षड्यंत्र का भाग है कि वो दूर चला गया था और पता ना लगे कि उसका हाथ है उसके अंदर। तो वो नजरों को सहन करते करते ही प्रवेश करता है और कई कई बड़े बोलते तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम अयोध्या के राजा बनोगे अभी, व्हाट नॉनसेंस। तो कहते हैं कि मैं आप आज से आप मेरी माता नहीं है, आप मेरे शत्रु वैरिणी है, और दशरथ को भी ये लग रहा है कि भरत का इसमें हाथ है, नहीं तो मेरी प्रिय पत्नी कैकेयी इतनी दूषित नहीं होती। तो उससे भी विमुख हो गए हैं, वो देखना नहीं चाहते उसको, सोचेंगे आप एक तो दुखी है ऊपर से भरत की ओर देख रहे कि ये षड्यंत्र का भाग है, कितना कष्ट है भरत को देखिए आप। और ऐसे प्रसंग में भरत को अपना चरित्र बनाए रखना है, नॉट टू गेट चेंज्ड, बदलना नहीं उसको, उसका स्थायी भाव जो प्रभु की सेवा का है उसको बनाए रखना है। तो कहते नहीं माता मैं आपको त्याग देता हूं, राज्य तो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, अभी मैं जा रहा हूं जंगल में राज्याभिषेक का सामान लेकर, अभी जा रहा हूं सेना को लेकर ब्राह्मणों को लेकर सब लोग को लेकर, आपको आना है तो आप भी आइए नहीं तो मत आइए, लेकिन मैं जा रहा हूं और प्रभु राम का राज्याभिषेक जंगल में करके मैं उनको लेकर आऊंगा, देखता हूं मेरे प्रेम के सामने वो कैसा करेंगे, कैसे ना बोलते हैं। जा रहे हैं ध्वजा राज्य की लेकर दार दंड लेकर जंगल की ओर जा रहे हैं, इधर जंगल में क्या हो रहा है, लक्ष्मण जी विजिल दे रहे ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑल हिंदी विजिल, पहरा दे रहे ना, सब जगह देख रहे हैं, तो पेड़ पर चढ़ देखते हैं कि कोई आवाज कौन सी आ रही है, देखते तो अयोध्या का राज धन लेकर भरत आ रहे हैं, तो इतने क्रोध से आंख बोला हो जाते हैं कि भैया तुमको विनाश समूल विनाश नष्ट करने के लिए, जंगल में ही तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाए, सेना लेकर आ रहा है भरत, आप आदेश दो भैया, अभी मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं, तो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। तभी प्रभु शांत समुद्र की तरह है, तो लक्ष्मण शांत हो जाओ, मैं अपने कनिष्ठ भ्राता भरत को अच्छी तरह जानता हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो और देखो क्या होता है, किस कारण वो यहाँ पर आ रहा है। और जब वो देखता है सुनता है भरत की बातें तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं लक्ष्मण जी के, कि मैं क्या सोच रहा था, भरत क्या सोच कर यहाँ पर आए हैं, बड़ा बाका प्रसंग है। एनीवे शॉर्ट में बताया तो ऐसा है कि भरत को रामचंद्र प्रभु मना कर देते हैं, पर नहीं हो सकता ये। तो बड़े ही दुखी हृदय से सारी राज्याभिषेक की सामग्री जो है वो एक कुएं में डाल देते हैं। वो आज भी भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध हैं। बड़े ही हैवी हार्ट, बड़े ही गहरे हृदय की भावना से वो दुखी होकर, निराश होकर अपना सारा वहाँ डाल देते हैं। और प्रभु से कहते हैं, ये दुख भरी आज्ञा जो मुझे आप दे रहे हैं, मैं एक ही अनेक शर्तें मेरी है उसके लिए, आप जंगल में रहेंगे, मैं भी राज्य के बाहर रहूंगा। आप राज्य की कोई सुविधाओं को लेने सकते हैं वनवास के नियम के अनुसार, मैं भी अयोध्या के राजा राज्य की कोई सुविधाएं, कोई फैसिलिटीज नहीं लूंगा। मैं राज्य के बाहर जंगल में रहूंगा, नंदीग्राम में। आप नंगे पैर चलेंगे, मैं भी चप्पल या कोई धारण नहीं करूंगा। आप कंदमूल खाएंगे, मैं भी कंदमूल खाऊंगा। आप वलकल पहनेंगे, वृक्ष की खाल पहनेंगे, मैं भी वृक्ष की खाल पहनूंगा। आप जटाओं को धारण करेंगे, मैं भी जटा धारण करूंगा। मैं कटी वस्त्र पहनकर रहूंगा। और ये पादुका आप पहनिए, इन पर आप चरण रखिए, और इन्हीं को मैं राजा बनाकर कुटी में रखूंगा और वहीं से राज्य चलाऊंगा। और रोज आपके चरणों की पादुकाओं की पूजा करूंगा, उनसे आदेश लूंगा और उसके अनुसार राज्य चलाऊंगा। 14 साल राज्य चलाऊंगा मैं। 14 साल के बाद एक क्षण भी आप देर से आएंगे तो भरत को आप मृत पाएंगे, ये वादा कीजिए। अगर भरत को जीवित दिखना चाहते हैं तो आपको 14 साल के एक क्षण भी देर से नहीं आना है उस घड़ी से। और बड़े दुखी हृदय से आंखों से आंसू बहाते हुए चले जाते हैं। सब जनता तो नहीं आती अयोध्या की, जब लौट के आते हैं, ऐसे रामायण में लिखा हुआ है कि भरत के जीवन पूरे काल में राम भी लौट के आते हैं, 11,000 साल राज्य करते हैं, फिर भी जनता इस इतिहास को, इस भाव को भूल नहीं पाती है कि इसका इसमें हाथ था। इस जन निंदा को भरत ने जीवन भर झेला है। पेन ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, हमको कितनी तकलीफ होती है। किसी ने अगर हमसे हमारे बारे में गलत फहमी पैदा किया तो कितना कष्ट होता है, हम लोग कितना मिटाने की कोशिश करते हैं। भरत ने एक भी कण की कोशिश नहीं की जनता के भाव को मिटाने की। वो अपना केवल कर्तव्य करते रहे निस्वार्थ भाव से। ये रामायण का सार है, केवल सेवा। सत प्रसंग में, कुप्रसंग में, आनंद प्रसंग में, दुख प्रसंग में, यश प्रसंग में, निंदा प्रसंग में, चाहे निंदा होती हो तो भी सेवा करनी है, चाहे यश मिलता हो तो भी सेवा करनी है। भाव नहीं बदलता है उनका किसी भी तिथि में। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। चेतना वो होती है जो दृढ़ चेतना, जिसको हम कहते हैं स्थायी भाव, जिसको कहते हैं, वो प्रसंग के अनुसार बदलती नहीं है, इट इज रिमेन सेम। हमको भी ये सीखना है कि हमारी चेतनाएं यहाँ पर दिन हर क्षण में बदलती है। थोड़ा सा तारीफ हो गई तो हम लोग दूसरी चेतना में रहते हैं, कभी निंदा हुई तो हम लोग एकदम आग बबूला हो जाते हैं। अब तभी सेवा कर पाते जब तक हमको सराहना मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। संकट में हम सेवा नहीं कर पाते हैं, सुविधा नहीं मिलेगी तो सेवा नहीं कर पाते हैं। दिस होगा तो ही हम सेवा कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते हैं, बिना इतने प्रसाद के बिना नहीं कर सकते हैं। अगर सोने के लिए व्यवस्था नहीं तो हम लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। कितनी हमारी शर्तें हैं। लेकिन आप राम लक्ष्मण सीता और लक्ष्मण और इन सब लोगों को देखिए, भरत को देखिए, क्या कंडीशन दी है उनको। कोई ऐसी स्थिति जो है वो अनुकूल है उनके लिए? हर स्थिति प्रतिकूल है हमारी दृष्टि से, लेकिन हर अति अति प्रतिकूल स्थिति में वो इतनी श्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं, इतना सुंदर मर्यादा और त्याग का उदाहरण दे रहे हैं। वो रामायण का सार है। हमको रामायण की कथा तो सुनने में भी वो मनोरंजक है, मन के लिए भी बहुत आनंददायक है, आह्लाददायक है। सीता राम चरित अति पावन, हृदय को प्रफुल्लित करने वाला चरित्र है वो। लेकिन साथ साथ वो सार, जो मैसेज देने के लिए प्रभु रामचंद्र आए, उस मैसेज को हमको गंवाना नहीं चाहिए। शुड नॉट मिस द मैसेज। मैसेज मर्यादा का है कि संकट काल में भी कैसे मर्यादा पूर्वक जीवन जीना चाहिए। जब मृत्यु सामने खड़ी है, जब हमको कोई भयंकर रोग हो गया है, हमारे जीवन में ऐसा विध्वंसकारी समस्या पैदा हो गई है, तभी भी हमारे कृष्ण भावना को, राम भावना को कैसे बनाए रखना है, और तभी भी हमारी सेवा कैसे करती रहनी है, वो भी कृतज्ञ भावना से, विद ग्रैटिट्यूड इन द हार्ट, नॉट विद कंप्लेनिंग हार्ट, नॉट विद क्राइंग हार्ट। कैसे क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, वाई मी ओनली। मैं इतना भक्त हूँ, इतने साल से जप कर रहा हूँ, इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, और मैंने इतना, मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, सबकी सेवा करती है, तो ऐसे मुझे क्यों हो रहा है? ये भाव से नहीं, ये भाव से कि जो हो रहा है उससे भी अधिक बुरा होना चाहिए था, मेरी ऐसी योग्यता है, फिर भी प्रभु मुझे इतना अच्छा तरफ से रख रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं भक्तों का, इतना हमारे लिए भक्तों का समुदाय है जो हमको सपोर्ट कर रहा है, और मैं इस स्थिति में भी कैसे मेरी प्रभु की सेवा कर सकता हूँ? हाउ कैन आई सर्व इन दिस गिवन सिचुएशन, जो एक तरफ से बहुत संकटमयी और कसौटीमयी है, चुनौतीपूर्ण है। ऐसे स्थिति में एक श्रेष्ठ भक्त जो होता है, जिसका स्थायी भाव इस दर्जे का है, वो सोचता है व्हाट इज माय सर्विस इन दिस। दुख तो है, कष्ट तो है, पीड़ा तो है, लेकिन इसमें मेरी सेवा क्या है, उसको ही पकड़कर वो चलता है। इसलिए अगर जीवन में आपको कोई समस्या आती है, आप रामायण को पढ़ना, आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में उस समय की चुनौती में क्या करना चाहिए उसका मार्गदर्शन मिलेगा। एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ प्रॉब्लम, ब्रदर्स प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, हाँ, रोग होता है जीवन में, संकट आता है, शत्रु का आक्रमण होता है, यहाँ तक कि पत्नी का हरण हो गया है, कैसे अपने आप को बर्ताव रखना है, व्यवहार रखना है, कैसे जीवन को चलाना है, ये मत समझना कि संकट हमारे जीवन में नहीं आएंगे। हर प्रकार के, विविध प्रकार के संकट जो रामायण में वर्णन किए गए हैं, हमारे जीवन में भी छोटे मोटे तरीके में आते रहते हैं, हर प्रकार के। उसमें रामायण पढ़ने से आपको तुरंत एक शांति प्राप्त होगी, जैसे आग बगुले लक्ष्मण के सामने, शांत समुद्र के सामने प्रभु रामचंद्र चल रहे हैं, आग बगुले वाले को भी शांत कर रहे हैं, इतना उनका मन जो है वास्तव में शांत चित्त है, संतोषजनमय है। उसका और एक उदाहरण है, जब गरुड़ जी लक्ष्मण जी को वो जो पाश नागपाश किया गया था ना इंद्रजीत की ओर से, तो बेहोश पड़े थे, तो गरुड़ जी को आह्वान किया गया, ये तो सांप सांप उनका खाद्य है, वो नागपाश को तोड़ देंगे। तो गरुड़ जी आए, देखे थे, अरे लक्ष्मण जी और नागपाश में, और प्रभु आपके होते हुए, ये तो शेष नाग है ये स्वयं। सब नागों के स्वामी हैं ये, इनका इस नागपाश में बद्ध होना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु कहते हैं, मतलब गरुड़ जी उद्विग्न हो गए एक तरह से देखकर, कि मेरे स्वामी ऐसे तुच्छ समस्या में कैसे फंस सकते हैं, क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। और एक अपने स्वामी को एकदम तुच्छ समस्या में फंसे हुए देखे भी दुख होता ना, कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो उस उद्विग्न गरुड़ जी को भी प्रभु रामचंद्र संतोष देते हैं, कैसे, वो कहते हैं अभी तक तुम हमारे इस पूरी लीला से विभक्त थे, अलग थे, कोई आपको सेवा नहीं मिल रही थी, आप हमें इतने प्रिय हो, हमारे संग रहते हो, हमें हमेशा लेके जाते रहते हो वाहन के रूप में, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मेरी इच्छा थी कि इस हमारे लीला में आपका भी सहयोग होना चाहिए, इसलिए ये हमारी लीला है कि लक्ष्मण जी किसी पास पास में फंसे नहीं है, केवल आपको सेवा देने के लिए और लीला में सम्मिलित करने के लिए सब लीला आयोजित की गई है, अभी करो अपनी सेवा आप। ऐसे उद्विग्न गरुड़ जी के हृदय को संतोष दिया उन्होंने, हाउ वंडरफुल इज इट नॉट ट्रू, जस्ट सी। उनको वो बीच युद्ध में है, उनके भाई बेहोश पड़े हुए हैं, फिर भी एक उद्विग्न भक्त को वो संतोष दे रहे हैं इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। अभी आप इसका अगले का प्रसंग देखिए। अगला प्रसंग ये है कि जब विभीषण देखते हैं कि रावण ने आक्रमण कर लिया है प्रभु राम के सामने, प्रभु रामचंद्र जो है वलकल पहने हुए जटाधारी नंगे पैर जमीन पर खड़े हैं, ना कोई रथ है, ना कोई शस्त्र है, ना कोई आर्मर है, चिलखत पहना हुआ है, कुछ नहीं है उनके सामने। रावण सर्वश्रेष्ठ रथ पर खड़ा हुआ है, सोने का रथ है, अलंकार लगे हुए हैं, और सबसे श्रेष्ठ घोड़े उसके रथ को हांक रहे हैं, द बेस्ट ट्रेन हॉर्सेस। फिर बहुत श्रेष्ठ चिलखत पहना है युद्ध के लिए जो आवश्यक होता है, एकदम रॉयल वैभवशाली, और सबसे दिव्य शस्त्र अस्त्र से वो सज्ज हैं, इज द बेस्ट पोजीशन। और सारी जो सिद्धियां हैं, सारे जो शक्तियां हैं, माया शक्तियां, सबसे में निपुण होकर वो सबसे अधिक सुसज्ज होकर युद्ध में आ रहे हैं, और मेरे प्रभु आप तो नंगे पैर हो, आपके लिए कोई रथ भी नहीं है, कोई सारथी नहीं है, कोई घोड़े नहीं है। तो अभी विभीषण को दुख हो रहा है कि कैसे होगा प्रभु राम का, क्योंकि अपनी भैया की सारी शक्ति को जानता है कि कैसे कठोर प्रसंग में भी ये व्यक्ति विजयी हुआ है, इतनी कला उसके पास में, इतनी सिद्धियां है उसके पास में, इसके सामने प्रभु जमीन पे खड़े हैं, तो उद्विग्न हो गए, वो दुखी हो गए। तो कैसे उन्होंने बीच युद्ध में वाक्य प्रसंग में विभीषण को संतोष दिया। मैं कहते विभीषण मेरे जो दो पैर हैं ये मेरे रथ के पहिए हैं, पृथ्वी माता इसका प्रमाण देगी। और अपने पूरे शरीर का वर्णन करते हैं, अपने मेरे हाथ, मेरे कंधे, मेरी छाती, मेरी पीठ, ये सब कैसे ये रथ का अंग है और कैसे ये अभेद्य है, और मेरी भुजाएं और मेरे कंधे इतने शक्तिशाली है कि रावण के रथ से भी ये बलवान है, और सब मेरे शस्त्र अस्त्र मेरे पास निपुण हैं, मुझे रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आगे जाकर उनको रथ दिया गया, एक देवताओं की ओर से उनका सम्मान और उनकी डिग्निटी रखने के लिए। लेकिन प्रभु जी ने उसी समय विभीषण को ये सारा वर्णन करके नॉलेज दिया ना उन्होंने, अभी उनको पता नहीं, वो तो बाह्य दृष्टि से देख रहे हैं ना कि प्रभु तो वलकल पहन के खड़े हैं, उनके ऊपर कोई चिलखत भी नहीं है, उनको तो जमीन पर खड़े हैं, कोई रथ भी नहीं है, ये देखो आदमी ऐसा खड़ा है, तो वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन भगवान उनको दिव्य दृष्टि देते हैं, डिवाइन नॉलेज एंड डिवाइन विजन, कि आप जो देख रहे हो वैसा नहीं है, सत्य तो ये है। तो जब गुरु और भगवान हमें सत्य स्थिति का नॉलेज देते हैं और दृष्टांत देते हैं, तब भक्त के अंदर एक शक्ति पैदा होती है जीवन के हर संकट को सामना करने की। हम हमेशा जब जीवन में दुख भोगते रहते हैं तो एक माया के प्रभाव में लिप्त रहते हैं, हम लोग क्या करें, बीमार हो गए हम लोगों भी, पता नहीं पैसे भी नहीं है, पता भी रिश्तेदार भी कोई नहीं आ रहे हैं, पता घर भी गिरवी रखा हुआ है, पता नहीं ये भी करना है, ऐसा लगता है कि हम लोग कितने गहरे संकट में आ गए। लेकिन कोई भक्त मिलता है, श्री गुरुदेव मिलते हैं और हमको दिव्य नॉलेज देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं और दिव्य दृष्टि देते हैं कि ये संकट नहीं है, ये कृपा है आपके ऊपर, दिस इज नॉट मिजरी, दिस इज मर्सी ऑफ द लॉर्ड अपॉन यू। तो भक्त जो सहमा सहमा सा बुझा बुझा सा है तो खड़ा हो जाता है, यस आई अंडरस्टैंड कि ये मेरी मुझ पर की गई कृपा है, मुझे कोई दुख की जरूरत नहीं है, आई मस्ट ओनली टेक फुल बेनिफिट ऑफ द मर्सी दैट इज कमिंग टू मी, ये उसका मूड बन जाता है। जो एकदम हार चुका है वो खड़ा हो जाता है, वो सोचता है कि मैं मेरे जीवन में अब जो कृपा आ रही है उसको ढूंढ कर उसका पूरा लाभ लूंगा और आने वाले संकट के बाह्य प्रभाव से प्रभावित नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार से एक होपलेस कंडीशन दिख रही है उसको कि बिना शस्त्र के, बिना मतलब बिना रथ के और बिना वलकल के खड़े हैं, बिना चिलखत के खड़े हैं और इतना भयंकर युद्ध सामने खड़ा है, कैसे होगा। तो विभीषण तुरंत शांत हो गए, इमीजिएटली बिकम पीसफुल एंड फुल्ली कॉन्फिडेंट, जो उसकी वरी थी वो सब खत्म हो गई। ऐसा सत्संग होता है, सत्संग मतलब आपको दुख की स्थिति में भी वो सशक्त बना देता है, इट शुड मेक यू स्ट्रांग। जब आप संग करते हो और कोई समस्या लेकर किसी भक्त के साथ बैठते हो, उस समस्या में आपको शक्ति का प्रभाव, शक्ति का अनुभव होना चाहिए, वो संग है। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक सकारात्मक दृष्टिकोण जो देता है वो सत्संग है। भगवान की विषय में जो भगवान के द्वारा भेजे गई घटना के उपलक्ष्य में आपको बल देता है और उसका सही महत्व आपको समझाता है, वो सत्संग है। इट इज सत्संग, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ फेवरेबल टुवर्ड्स द लॉर्ड, प्रभु के प्रति आपको अनुकूल संकल्प और निश्वास पैदा करता है, वो सत्संग है। नहीं तो हम लोग साथ में भक्तों के पिक्चर देखते हैं, साथ में पिकनिक बनाते हैं, साथ में पिज्जा खाते हैं, मतलब भक्तों के संग में खाए। जो भगवान के विषय में आपको विश्वास और दृढ़ निश्चय देता है वो सत्संग है। उस पर आप परख सकते हो कि सत्संग था कि कुसंगति थी। उस तरह से एक चींटी भी आपको सिखा सकती है और अपने उदाहरण से आपको प्रेरणा दे सकती है, वो भी सत्संग है। आपको भगवान के विषय में सकारात्मक विश्वास और संकल्प और दिशा प्राप्त होनी चाहिए। चौथा प्रसंग है मंदोदरी का। जब रावण का देहांत हो गया, प्रभु ने उसका वध कर दिया, तो मंदोदरी छाती पीट कर रणांगण में आकर रो रही थी, तो मैं जितनी दुर्भागी हूँ कि मेरे पति का देहांत हो गया, इतने मैं समझाने के बाद भी नहीं समझे, मैंने स्वयं समझाया था उनको कि आप मुझे कहिए आपको क्या सेवा चाहिए, लेकिन सीता का मोह छोड़ दीजिए, मेरे पिता ने कहा था, राज्य मंत्री ने कहा था, विभीषण ने कहा था, इंद्रजीत ने भी मरने के पहले कहकर गया था, पिताजी आप इन पर युद्ध मत करना, ये साक्षात विष्णु है, मेरा सुदर्शन अस्त्र, पशुपुत्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र भी इनको प्रदक्षिणा करके लौट के आया है। तो वो कहते हैं कि तुम डर गए हो पुत्र इंद्रजीत, अगर डर गए तो विश्राम करो, ये मेरा युद्ध है, आपका युद्ध नहीं है, यू टेक रेस्ट, लेकिन डरे हुए मेरे सामने मत आओ, आप डर गए हो उनको देखकर इसलिए आए हो। मैं पिताश्री मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं दोबारा जा रहा हूँ मरने के लिए, मैं आपको सचेत करने के लिए आया था, अभी भी आपको मौका है, सीता को लौटा दो और प्रभु रामचंद्र के सामने क्षमा मांगो और राक्षस वंश को बचाओ। हे प्रभु, फिर भी नहीं समझे और इस तरह से आज बड़े ही दीन तरह से मृत्यु को प्राप्त हो गए, मैं कितनी दुर्भाग्य हूँ। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री के नाम से प्रसिद्ध है, जैसे सीता है, जैसे लक्ष्मी है, हाँ जैसे रेवती बलराम जी की है, जैसे दमयंती है नल की, वैसे पार्वती शिव जी की है, वैसे मंदोदरी रावण का वर्णन आता है। हम लोग जब विवाह करते हैं किसी का तो सिंदूर दान के विधि में हम रावण और मंदोदरी का नाम भी लेते हैं उस श्लोक में, रावण के लिए नहीं मंदोदरी के लिए। इतनी श्रेष्ठ पतिव्रता थी वो, अपने अपने पातिव्रत के बल पर उसको मोक्ष प्राप्त हुआ, रावण जैसा पति होने पर भी। वो अभी उद्विग्न है, रणांगण में रो रही है, अपने दुर्भाग्य को कोस रही है, तो प्रभु वहां पर आते हैं। अभी उन्होंने संतोष कैसे दिया मंदोदरी को, उन्होंने कहा आप बड़ी भाग्यवान है। वो कहते प्रभु मैं भाग्यवान कैसे हूं, मैं तो विधवा हो गई हूं, सौभाग्य को खो चुकी हूं, मैं कैसे भाग्यवान हूं। उन्हें कहा आपका भाग्य आज उदय हो गया है, आपका दुर्भाग्य था कि आपकी इनसे विवाह हो गया, इस वॉज योर मिस फॉर्चून, और आज आपका दुर्भाग्य नष्ट होकर सद्भाग्य जागृत हो गया है, आज आपका सारा जो भी कुछ पाप संबंध था इनके साथ में वो नष्ट होकर आज आप परम पुण्य और परम पावन हो गई हो। इस तरह से बहुत समय तक उन्होंने उनको समझाया, द बेस्ट बिरीवमेंट काउंसलिंग। हमारे हॉस्पिस में एक मृत्यु के बाद में होता है बिरीवमेंट सर्विसेस, जो दुखी हैं उस उनके देहांत के वजह से उनको एक काउंसलिंग होता है, साल भर चलता है वो, दूसरा दिन आता है ना एक साल के बाद में मृत्यु का, सेम डे डेथ एनिवर्सरी होती है, तो फिर वो दोबारा उसको जीते हैं सब लोग, दे लिव अगेन द एक्सपीरियंस कि इस दिन में ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर पापा 3 बजे हिचकी लिया, खून की उल्टी किया, फिर उनका देहांत हो गया, उसको पूरा दोबारा याद करके पूरा वो गो थ्रू करते हैं उसको। तब तक हमारी टीम उनको सारे निकटवर्तियों को मिलती रहती है और सांत्वना देती रहती है, उसको कहते हैं बिरीवमेंट काउंसलिंग। दुख तो हुआ है, एक व्यक्ति तो चला गया आपके बीच में, आप कुछ खो गए हो, लेकिन फिर भी जीवन उत्साह से और कृतज्ञता से चलाना है, नॉट गिव अप एवरीथिंग, लाइफ इज नॉट एंडिंग। तो ऐसा सुंदर रावण पति के देहांत के बाद में प्रभु रामचंद्र ने अतिशय उत्कृष्ट बिरीवमेंट काउंसलिंग मंदोदरी को दिया है, उसको संतोष प्राप्त करा दिया है। ऐसे नहीं कि वो खुशियाँ से नाचने लगी उसके बाद में, लेकिन उसके उद्विग्न हृदय को उन्होंने एक शांतता और आनंद प्रदान किया और जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रेरित किया उनको उन्होंने। तो ये हमारे प्रभु रामचंद्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, त्याग पुरुषोत्तम, और करुणा उनकी कितनी है, उन्होंने क्या वादा किया इसमें। वो हनुमान जी को बोल रहे हैं, अपने सुग्रीव को बोल रहे हैं, विभीषण को बोल रहे हैं, अरे तुम तो रावण के भाई हो, शरण में आए हो, मैं आपको शरण देता हूँ, और अगर रावण भी आएगा आज पश्चाताप लेकर तो उसको भी शरण दूंगा मैं। तो भक्त लोग पूछते हैं अरे भगवान आप कह रहे हैं कि रावण को भी शरण देंगे, आपने तो इनको ऑलरेडी वादा कर चुका है कि उसके पहले आपने भीषण को बोल भी दिया है कि तुम लंका के राजा बनोगे, मैं तुम्हें लंका का राजा अभिषेक कराऊंगा, और फिर रावण आए तो क्या होगा, फिर गड़बड़ होगा ना, फिर किसको देंगे लंका आप, और रावण को क्या दोगे फिर आप, तो रावण को मेरी अयोध्या दे दूंगा। तो फिर जो भाई वहां बैठा है 14 साल से उसको क्या दोगे, भरत महाराज को, बोले भरत को वैकुंठ दे दूंगा, फिर प्रभु आप कहाँ जाओगे, मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहूंगा। मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहूंगा, द बेस्ट प्लेस टू लिव इन, द अबोड ऑफ लव, लेकिन मेरा वादा जो है वो पूरा करते रहूंगा। हाँ एतद् व्रतम मम, एक बार कहिए आज रामनवमी के दिन हो या किसी दिन हो, एक बार कहिए भगवान के सामने जाके तवा अस्मिति, मैं आपका हूं भगवान, मुझे अपना बना लो, मैं आपका बन के रहना चाहता हूं, एक बार हृदय से कहिए, बिना द्वंद्व से, मतलब नो डुप्लिसिटी। एक बार कहिए भगवान मैं आपका हूं, आप भूल जाएंगे अपने जीवन में कभी आपने इसे कहा था, लेकिन वो नहीं भूलेंगे, आपके रक्षा में आएंगे। वो वादा करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चिरंतन अभय देता हूं मैं, ये मेरा व्रत है जीवन का, भले मैं अवतार में हूं या अवतार में नहीं हूं या दिव्य धाम में हूं, कहीं पर भी हूं, जो कोई भक्त मेरे सामने आता है, मेरे विग्रह के सामने, मेरे सामने आकर एक बार बोल देता है, मैं पूरा जीवन की उसकी रक्षा करता हूं। खुद संकट में है, खुद वनवास में है, कहां बोल रहे हैं ये सब, ये दक्षिण भारत के कोने में बैठ खड़े होकर सागर के सामने खड़े हो रहे बोल रहे हैं। अभी ब्रिज बनाकर जाना है उनको, पति अब पत्नी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, संकट समाप्त नहीं हुआ है, उनका दुख समाप्त नहीं हुआ है, अभी ब्रिज बनाना है, अभी आगे जाना है, एक भयंकर युद्ध होने वाला है दिव्यास्त्रों वाला, कई दिनों से चलेगा, संभार होगा उसके अंदर, और प्रभु को तो विश्वास है कि मैं प्रभु हूँ, मैं सब समाप्त कर दूंगा, जनता का भी तो विश्वास नहीं है क्या होगा इसमें, इस भयंकर युद्ध में क्या होगा। उस बीच में प्रभु जो है अपने स्थाई भाव को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रभु हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, वॉट एवर वी आर वी शुड रिमेन, वी शुड नॉट चेंज। तो शांत हृदय से वादा कर रहे हैं, रावण भी आएगा, जो पत्नी को खींच के ले गया वो भोग लेने के लिए उसका, लेकिन क्षमाशीलता इतनी है, इतनी करुणाशीलता है कि वो भी आएंगे तो उसको भी आसरा देंगे और उसको भी अभय देंगे, उसको भी सब क्षेम कुशल का रक्षा करेंगे। ऐसे प्रभु को हमको शरण जाना है। देखो हाउ फॉर्चुनेट वी आर, हम किसी ऐरे गहरे क्षुद्र व्यक्ति की शरणागति की बात नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति सर्वशक्तिशाली है और सर्व करुणामय है और सब कुछ कर सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं, एनीथिंग ही कैन डू, ऐसे व्यक्ति को जब शरण जाएंगे तो प्रेम भी मिलेगा, आश्रय भी मिलेगा और समस्या का समाधान भी होगा और आनंद का भी आपको गारंटी मिलेगी। ऐसे प्रभु खुद बोल रहे हैं, खुद आपने उनसे अप्लाई नहीं किया पहले, वो स्वयं ही बोल रहे हैं कि रावण भी आएगा तो उसको भी सहारा देंगे और जो भी आएगा, ये तो यहां लिखा था सर्वभूतेभ्यो, यहां पर लिखा है सर्वदा तस्मय, मतलब सब समय के लिए सब जीवों के लिए मेरा वादा है, आप निश्चिंत रहो, चाहे मैं राम के रूप में हूं या गौरांग महाप्रभु के रूप में हूं या कृष्ण के रूप में हूं, आप एक बार आकर कहिए मुझे कि मैं आपका हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ऐसे प्रभु का दास बनना ये भाग्य की बात है, इसलिए गौरांग महाप्रभु मुरारी गुप्ता के कहते हैं धन्य है वो प्रभु जिसे आप जैसे भक्त मिले हैं, जो मरने को तैयार है लेकिन अपने प्रभु का नाम छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि मुरारी गुप्ता को प्रभु ने कहा था, अरे मुरारी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो मुरारी गुप्ता रात भर कोशिश किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम तो पूरा मंत्र बोल रहे हैं, वो तो श्री राम जय राम यही बोल रहे हैं, उनके मुंह से वो जबान पकड़ के कोशिश कर रहे हैं कि जबान हे जिह्वा तुम इस दिशा में मुड़ो और हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, जिह्वा यहाँ वहाँ मुड़कर पकड़ के छोड़ने के बाद भी प्रभु राम का ही नाम ले रहे हैं। तो सुबह तक पूरे वैफल्यग्रस्त हो गए, फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड, और सुबह आके प्रभु को मिलते हैं, प्रभु मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। बोले क्यों, आपने रात को मुझे आदेश दिया था लेकिन एक बार भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं कर पाया, मेरे जिह्वा से केवल राम 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 ही नाम निकलता है। प्रभु ने गदगद होकर उसको गले लगाया, बोले मुरारी धन्य है वो प्रभु जिसे आप जैसे भक्त प्राप्त हुए, अपनी जान देने को तैयार है लेकिन प्रभु का आश्रय उनका नाम नहीं छोड़ रहे। और जानते हो मुरारी तुम राम भक्त हनुमान हो। मुरारी गुप्ता को उन्होंने साक्षात्कार किया, तो प्रभु भी बता रहे हैं कि धन्य है वो प्रभु जिसको ऐसा भक्त है और धन्य है वो भक्त जो अपने प्रभु के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार, लेकिन प्रभु को छोड़ने को तैयार नहीं। और हमारे जीवन में ऐसा ये श्रेष्ठ उद्देश्य हमको प्रभुपाद जी ने दिया है, प्रभु रामचंद्र के रूप में, प्रभु गौरांग महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण भगवान के रूप में, इसे श्रेष्ठ प्रभु दिए हमको, जिनको हम कोई चिंता की बात नहीं, डोंट हैव टू वरी कि अगर मैं शरण जाऊँ तो क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे निभाऊंगा, डोंट हैव टू वरी एनीथिंग, जस्ट हैव फेथ एंड चैंट द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो प्रभु के सच्चे प्रतिनिधि प्रभुपाद जी ने हमको ये मैसेज दिया है, श्रद्धा के साथ आप महामंत्र का उच्चारण करो, चार नियम का पालन करो और भक्तों का अपराध मत करो। इतना आप करोगे तो मैं आपको वैकुंठ धाम ले जाऊंगा, मैं आपको गौलोक धाम ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। इट इज मेड इट सो सिंपल फॉर अस। हाँ, प्रभु का नाम, जैसे नारद मुनि कह रहे हैं, राम नामैव 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 मम जीवनम, वो नाम को अपना बना लो, नाम को जीवन का सर्वस्व बना लो। जो नाम भगवान से भी बढ़कर है, तो भगवान ने स्वयं पत्थर को छोड़ा तो पत्थर डूब गया, और भक्तों ने नाम लिखकर भेजा तो पत्थर तैर गए सब। तो हनुमान जी कहते हैं जिसको आपने त्याग दिया तो उसको डूबना ही है, जिसको आपने स्वीकार किया है वो बचेगा। तो पत्थर पर आपका नाम है तो वो तैर रहा है भव सागर में, जो पत्थर को आपने छोड़ दिया वो डूब गया। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं आप उस नाम का आश्रय लो, अपने जीवन को नाम को एक रूपत्व कर दो, और भक्तों का अपराध मत करो, भक्तों की सेवा करो, उनका सत्संग करो, तो इसी जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है। और नहीं भी हुई प्राप्ति इस जीवन में तो भगवत सेवा निश्चित रूप से मिलेगी आपको चिरंतन काल के लिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहेतु की त्वयि, ये इस जीवन में मुमकिन है। इटर्नल सर्विस, नित्य सेवा प्राप्त हो सकती है आपको, जैसे भगवान का नित्य व्रत है वैसे आपको नित्य चिरंतन भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। इतना उच्च जीवन व्रत और जीवन उद्देश्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति सब परम भाग्यवान है, और हम सब उस उनमें से परम भाग्यवान लोगों में से एक हैं, उनका संग हमको प्राप्त हो रहे हैं, परम भाग्यवान लोगों का। तो आइए हम सब लोग इस रामनवमी के महामहोत्सव पर इस परम भाग्य पर चिंतन करें, और भगवान के सामने जाकर कहे तवास्मिति, आई एम योर्स माई लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आइए आज के इस सुंदर रामायण कथा के लिए प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे। तीन बार हरि बोल बोल के।